पृष्ठ संख्या 75, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति। गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर महात्मा गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत लौटे। देश में फिरंगियों का दमन चक्र चल रहा था, बंगाल मार्शल ला के नीचे कराह रहा था, सीमा प्रांत में लाल कुर्ती दल वालों को कुचला जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू एवं शेखानी मुंबई जाते समय गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार दिल्ली के गांधी इरविन समझौते को तोड़ने पर तुली हुई थी। ऐसी स्थिति में गांधी ने गवर्नर जनरल से और आगे बात करनी चाही, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। इसी समय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया कि यदि सरकार अपना रुख बदलने को तैयार हो तो कांग्रेस उसके साथ सहयोग करने को तैयार है, अन्यथा सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करना पड़ेगा। कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, फलस्वरूप आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। कांग्रेस तथा सरकार में दोनों ओर से क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होने लगी। सरकार की ओर से कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दी गई, उसके दफ्तरों पर छापे मारे गए तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। मारपीट, लाठी वर्षा, सामूहिक दंड आदि बातें एकदम साधारण हो गईं। विलिंगडन का यह दावा भ्रमपूर्ण साबित हो गया कि वह आंदोलन को 6 सप्ताह के भीतर कुचल देगा। सरकार के दमन चक्र के बावजूद आंदोलन की गति स्थिर नहीं हुई। विदेशी माल के बहिष्कार का प्रचार पहले से अधिक हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, कांग्रेस ने इस प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद परिस्थिति का जो मुकाबला किया वह सन 1930 के आंदोलन से अधिक श्लाघनीय था। इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम लीग ने आंदोलन में सरकार का ही साथ दिया। सरकार ने मुसलमानों को विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे करने के लिए भड़काया। पृष्ठ संख्या 76, सांप्रदायिक निर्णय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रश्न के संबंध में किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सका था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की कि यदि कोई सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया तो ब्रिटिश सरकार अपनी काम चलाऊ योजना कार्यान्वित करेगी। चूंकि इस तरह की कोई सर्वसम्मत योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकी, इसलिए 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक निर्णय या मैकडोनाल्ड निर्णय कहते हैं। सांप्रदायिक निर्णय की मुख्य बातें, पहला, प्रांतीय व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या बढ़ाकर दुगनी कर दी गई। दूसरा, मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों तथा एंग्लो इंडियनों के लिए पृथक निर्वाचन का विधान किया गया। तीसरा, अछूतों को हिंदुओं से भिन्न मानकर अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रदान किया गया। चौथा, श्रम, व्यवसाय, उद्योग आदि के संगठनों को व्यवस्थापिका सभाओं में विशेष स्थान प्रदान किए गए। पांचवा, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में स्त्रियों के लिए 3% स्थान सुरक्षित कर दिए गए। छठा, भूस्वामियों के लिए सुरक्षित स्थानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। सातवां, जिन प्रांतों में मुसलमानों की संख्या कम थी वहां उन्हें जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, परंतु जहां हिंदुओं की संख्या कम थी वहां उन्हें वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। आलोचना, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के बाद इसकी काफी आलोचना हुई, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार थीं। इसमें हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की गई। दूसरा, हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया था क्योंकि वे अल्पमत में थे। पृष्ठ संख्या 77, वहां उन्हें वे सुविधाएं नहीं दी गईं जो कि अन्य अल्पमतों को दूसरे स्थानों पर दी गई हैं। तीसरा, सांप्रदायिक पद्धति राष्ट्रीयता के लिए अत्यंत घातक है, परंतु अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के अनुसार न केवल तत्कालीन सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखा बल्कि उसका और भी विस्तार किया। चौथा, जहां यूरोपियनों की जनसंख्या 1% थी वहां उन्हें 10% सीटें दी गईं। पांचवा, भारतीय ईसाइयों एवं स्त्रियों ने अपने लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की थी, फिर भी यह पद्धति उन पर लाद दी गई। छठा, सांप्रदायिक निर्णय लोकतंत्र के लिए घातक था, इससे विभिन्न संप्रदायों के बीच वैमनस्य बढ़ा, पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ और अंततः देश का विभाजन हुआ। गांधी का आमरण अनशन एवं पूना समझौता। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की विज्ञप्ति के बाद गांधी ने भारत सचिव सर सैमुअल होर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हरिजनों को हिंदुओं से अलग किए जाने पर वे जान की बाजी लगा देंगे। सरकार ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। गांधी ने इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 में आमरण अनशन की घोषणा की। महात्मा गांधी के अनशन को लेकर देश में निराशा छा गई। चारों तरफ से अनशन तोड़ने के लिए गांधी जी से प्रार्थनाएं की जाने लगी। महात्मा गांधी की अवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। एतएव भारतीय नेताओं ने आपसी समझौते के आधार पर इस समस्या को सुलझाना चाहा। मदन मोहन मालवीय ने इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय नेताओं की एक परिषद बुलाई। उनके द्वारा आयोजित परिषद की बैठक पूना में हुई। उसमें हरिजन नेता डॉक्टर अंबेडकर के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं M.A. राजा के प्रयत्नों से एक समझौता हुआ। यह समझौता पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से विख्यात है। पूना समझौते को महात्मा गांधी तथा डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया तथा सरकार ने भी उस पर अपनी स्वीकृति दी। इस समझौते पर 26 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए तथा उसी दिन महात्मा गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। पूना समझौते की शर्तें निम्नलिखित थीं। पहला, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन के सुझाव के स्थान पर उनके लिए विधानमंडलों में 148 स्थानें सुरक्षित कर दी गईं। दूसरा, हरिजनों के लिए 20% स्थान ब्रिटिश भारत के प्रांतों में भी सुरक्षित किए गए। तीसरा, स्थानीय संस्थाओं एवं सार्वजनिक सेवाओं में हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। चौथा, हरिजनों को शिक्षा देने के लिए शर्तें रखी गईं। पांचवा, साधारण स्थानों में जहां हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित नहीं किए गए, हरिजनों को चुनाव में एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार पूना समझौते द्वारा हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ दी गई और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। पूना समझौता कांग्रेस के लिए एक हार थी, क्योंकि सिद्धांततः उसने हिंदू समाज में जातिवाद तथा सांप्रदायिकता को कम से कम नीति के रूप में तो स्वीकार कर ही लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। भारत सचिव सर सैमुअल होर गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे। उन्होंने अनिच्छा से 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बैठक बुलाई, जिसमें 46 लोगों ने भाग लिया। इसमें भारत से केवल राजभक्तों और संप्रदायवादियों तथा ब्रिटेन से केवल उदारवादियों तथा प्रतिक्रियावादियों ने भाग लिया। मजदूर दल ने इस प्रभावहीन तथा प्रतिनिधित्व विहीन सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस इससे बिल्कुल अलग रही, फलतः सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। उसने केवल पिछले गोलमेज सम्मेलनों के निर्णयों की पुष्टि की और नए संविधान के संबंध में कुछ बातों पर निर्णय लिया। भारतीय प्रतिनिधियों ने कुछ प्रगतिशील सुझाव रखे, जिन पर सम्मेलन में कोई ध्यान नहीं दिया गया। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम चरण पूना पैक्ट के बाद गांधी ने यरवदा जेल में आत्मशुद्धि और हरिजन उद्धार के लिए 21 दिनों के उपवास का निर्णय लिया। 8 मई 1933 को उन्होंने उपवास प्रारंभ किया और सरकार ने उसी दिन उन्हें जेल से छोड़ दिया। पृष्ठ संख्या 79। जेल से छूटकर गांधी ने 6 सप्ताह के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया तथा सरकार से राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की अपील की। सरकार ने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने आम सविनय अवज्ञा को बंद कर व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की अनुमति दी। सरकार ने व्यक्तिगत सत्याग्रहियों को भी दंड देना शुरू किया। महात्मा गांधी को अगस्त 1933 में फिर 1 वर्ष की सजा हुई। सरकार के रुख के विरुद्ध उन्होंने फिर उपवास किया और 1 महीने के भीतर ही उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। आंदोलन मंद गति से चल रहा था। महात्मा गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेता हरिजन उद्धार, बिहार में भूकंप पीड़ितों की सहायता और दूसरे रचनात्मक कार्यों में लग गए। मई 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद की बैठक में इस सत्याग्रह आंदोलन को बंद करने की घोषणा की गई। इस प्रकार 1930 में जिस सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बड़े शान से की गई थी, वह बिना शर्त ही बंद हो गया। आंदोलन की सामाजिक आधार की समीक्षा। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में दूसरा सार्वजनिक राष्ट्रीय संघर्ष था जो सन 1934 में समाप्त हो गया। इसका जनाधार 1921 के जन आंदोलन से अधिक व्यापक था। इसमें भारतीय जनता में बढ़ी हुई राजनीतिक चेतना का सबूत मिलता है। आम लोग, जिनमें किसान भी थे, बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। पहली बार उन्होंने अपने व्यापक राजनीतिक एवं आर्थिक संगठक भी बने, किंतु आंदोलन का संचालन कांग्रेस के बुर्जुआ नेताओं के हाथों में ही रहा। सुमित सरकार के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन में बुर्जुआ वर्ग ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों तक भारतीय बुर्जुआ वर्ग और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बीच अंतर विरोध काफी व्यापक हो गया था। उनकी मांगों को स्पष्ट झलक गांधी के 11 सूत्रीय कार्यक्रमों में देखने को मिलती है, लेकिन इस वर्ग का भी अपनी सीमाएं थीं। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों की भूमिका काफी व्यापक थी। हालांकि आंदोलन का नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग के हाथों में रहा, जिसने व्यापक जन असंतोष का भरपूर फायदा उठाया और आंदोलन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। पृष्ठ संख्या 80। आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने भूमि कर न देने का नारा किया, जिसका किसानों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। किसानों ने स्वराज के राजनीतिक संघर्ष को भूमि कर के विरुद्ध संघर्ष माना। संगठित राजनीतिक आंदोलन में किसानों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। देश के कई भागों में किसान आंदोलन भी हुए, जैसे बारदोली सत्याग्रह 1929-33 के विश्व आर्थिक संकट का भारतीय किसान समुदाय पर बड़ा गहरा असर पड़ा। अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने कांग्रेस द्वारा संगठित आंदोलनों और सभाओं में भाग लिया। वे गांधी को अपना निर्विवाद नेता मानते थे, किंतु महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगों में जहां भारतीय पूंजीपति वर्ग की भी सभी मांगें शामिल थीं, भारतीय मजदूरों और किसानों की कोई मांग नहीं थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसानों को कोई राहत दिलाए बिना ही समाप्त हो गया। किसानों ने यह महसूस किया कि उनके हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र वर्ग संगठनों और नेतृत्व की आवश्यकता है। उनका यह भी ख्याल था कि जब किसान अपने वर्ग की मांगों के साथ स्वराज के राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेंगे, तभी यह संघर्ष सफल हो सकेगा। 1927 में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार किसान सभा बनी, जिसने आगे चलकर अखिल भारतीय किसान सभा का रूप ग्रहण किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़े बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों से लेकर शहरी निम्न मध्यम वर्ग के लोगों तथा गाँव में किसानों और जनजातियों ने भी हिस्सा लिया। वहीं आंदोलन से साम्यवादी दल के नेतृत्व में संगठित औद्योगिक मजदूर वर्ग की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण बात थी। अप्रैल 1930 में इरविन ने बेन को लिखा था कि संगठित मजदूर वर्ग ने अपने आप को सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं किया है। हालांकि मई में गांधी की गिरफ्तारी के प्रतिक्रिया स्वरूप सोलापुर में मजदूरों ने जबरदस्त विरोध किया था। साथ ही मुंबई के और अन्य केंद्रों के मजदूरों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया था। इससे साबित होता है कि कांग्रेस से प्रभावित मजदूरों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में विभिन्न नेताओं और लेखकों के विचार। सुभाष चंद्र बोस तथा विठल भाई पटेल ने वियना से एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें गांधी के निर्णय पर खेद प्रकट किया गया था। दूसरी ओर रजनी पामदत्त का विचार था कि 1930 से 34 के संघर्ष की महान तरंग के दुखद अंत से हमें उसकी उपलब्धियों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 81। विशेषकर इसकी गहरी और चिरस्थायी शिक्षा और इसके महान और अस्थायी लाभों की, आंदोलन के पीछे जनता की असीम श्रद्धा, निष्ठा, त्याग और समर्थन था, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आंदोलन सफलता के काफ़ी करीब पहुंच गया था, लेकिन इसे अस्थायी तौर पर विफलता मिली। दूसरी ओर साम्राज्यवादियों ने अपने प्रत्येक अस्त्र का इस्तेमाल किया ताकि भारत की जनता को वह अपनी मर्जी के आगे झुका ले, उनको कुचल कर रख दे और आज़ादी की उनकी लड़ाई को मिटिया मेट कर दे, लेकिन वह इस काम में विफल रहा। लेकिन साम्राज्यवादियों के जबरदस्त दमन के बावजूद 2 वर्षों के अंदर ही राष्ट्रीय आंदोलन पहले से भी ज़्यादा तीव्र वेग से आगे बढ़ चला। यह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया था। संघर्ष की भट्टी में तपकर इस आंदोलन ने जनता में एक नई और अपेक्षाकृत अधिक राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास, गौरव और संकल्प को जन्म दिया। ताराचंद के अनुसार वास्तव में सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत सीमा तक सफल रहा था, क्योंकि इसमें लोगों का मनोबल बढ़ा तथा सरकार का राजनीतिक गौरव कम हुआ। इसमें अंग्रेजी आर्थिक हितों को हानि पहुंची, क्योंकि अब विदेशी कपड़ा और सूत का भारत में आयात 31 से 45% तक कम हो गया। जुडिथ ब्राउन के शब्दों में 1930 से 34 के बीच गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण समृद्धि हुई। इसने भारतीय क्षेत्रों के अंदर तथा क्षेत्रों के बाहर कांग्रेस के झंडे के लिए एक जोड़ने वाले तत्व का कार्य किया। आंदोलन ने जनता में नवीन एकता की भावना को जगाया। एक लंबे अभियान को चलाते रहना और गांधी की आत्मनिर्भरता पर बल देना भी कांग्रेस दल को अखिल भारतीय दल में परिवर्तित करने में सफल सिद्ध हुआ। आंदोलन ने कांग्रेस को एक नवीन राजनीतिक व्यवस्था के लिए सुसज्जित किया। भारतीयों के आपसी तथा अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंधों की उत्पत्ति तथा विकास में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रवर्तक व्यक्ति के रूप में एक विशेष भूमिका निभाई। उनके जीवन ने अखिल भारतीय नेताओं के संयोजन में तथा राजनीतिक परिवर्तन के क्रम में उनके महत्व को दर्शाया। प्रोफेसर सुशील कौशिक के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रवाद के इतिहास में दूसरा सार्वजनिक संघर्ष था। इसका जनाधार 1920-21 के आंदोलन से अधिक व्यापक था। इसमें जनता की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सबूत मिलता है। पृष्ठ संख्या 82, आंदोलन का महत्व। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। यद्यपि यह उद्देश्य तो प्राप्त नहीं हो सका, फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है। 1930 के दौरान आंदोलन जितना शक्तिशाली हो गया था, उसका अंग्रेजों ने अनुमान भी नहीं लगाया था। आंदोलन ने कर बंदी, लगान बंदी, शराब बंदी, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, गांजा, भांग और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं अदालतों का बहिष्कार, असहयोग आदि कई रूप धारण किए। संसार ने स्वयं स्वीकार किया कि सत्याग्रह आंदोलन बहुत सफल रहा। इस आंदोलन में कांग्रेस की गतिविधि को जितना अधिक समर्थन मिला, उतना जन समर्थन मिलने की संभावना न तो कांग्रेस के पदाधिकारियों को थी और न सरकारी अधिकारियों को। ब्रिटिश भारत का ऐसा कोई प्रांत नहीं बचा जहां आंदोलन का कोई असर न पड़ा हो। असहयोग आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन को महिलाओं का अप्रत्याशित योगदान प्राप्त हुआ। हजारों महिलाएं, जिनमें बहुत सी ऊंची घराने की और उच्च शिक्षा प्राप्त भी थी, घरों से बाहर आकर आंदोलन में शामिल हुई। आंदोलन को मजदूर और किसान वर्गों का भी अभूतपूर्व योगदान मिला। सविनय अवज्ञा आंदोलन से भारत ब्रिटिश संबंधों में एक नया मोड़ आया। सरकार को अब यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण तत्व है और आने वाले किन्हीं भी संवैधानिक सुधारों में इसकी अवहेलना करना संभव नहीं। अप्रैल 1932 में आने वाले नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने बड़े गर्व से कहा था, वह कांग्रेस को 6 हफ्तों में दबा सकता है, किंतु वह ऐसा करने में असफल रहा। यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण इतना सफल नहीं हुआ, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बुरी तरह से झकझोर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान समस्त राष्ट्र जाग उठा। सभी संप्रदायों तथा राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इस संघर्ष में अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया। हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन में भाग लिया। दूसरी ओर मुसलमानों की संख्या बहुत न होने पर भी उत्साहवर्धक थी। जमायत उलमा, मुस्लिम राष्ट्रीय दल तथा एहसरुल इस्लाम जैसे मुस्लिम दलों ने इस संघर्ष में भाग लिया। पृष्ठ संख्या 83, परंतु सबसे अधिक भूमिका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान के स्वयंसेवक संगठन लाल कुर्तीधारी खुदाई खिदमतगारों ने निभाई। बीएल ग्रोवर ने लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी का महत्व बहुत बढ़ गया। अब भारत के राजनीतिक मंच पर उन्हें भारत भाग्य विधाता की संज्ञा दी जाने लगी। यद्यपि गांधी इरविन समझौते से वामपंथियों और प्रगतिवादी कांग्रेसियों को बहुत निराशा हुई थी और मार्च 1931 में होने वाले अधिवेशन पर भगत सिंह और उनके साथियों को मृत्युदंड दिए जाने और हुसैनवाला में उनके दाह संस्कार किए जाने की परछाई इस अधिवेशन पर पड़ रही थी और इन सब के लिए प्रत्यक्ष रूप से गांधी को दोष दिया जा रहा था कि उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ किए गए समझौतों में इन लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया। फिर भी गांधी का कराची में अभूतपूर्व स्वागत किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो विफलता मिली वह अस्थायी थी। संघर्ष की भट्टी से तपकर इस आंदोलन ने जनता में एक नई और अधिक अपेक्षाकृत राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास, गौरव और संकल्प को जन्म दिया। गांधी ने एक सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र को जगा दिया। सन 1930 से 34 के आंदोलन में सबक लेकर लोग संघर्ष के अगले दौर की तैयारी में जुट गए। 1930 से कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण स्वराज की प्राप्ति था। 1935 में अंग्रेज सरकार ने एक एक्ट पास किया जिनके अनुसार केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। यह अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट न कर सका, फलस्वरूप भारतीयों में अंग्रेजों की नीति के प्रति विरोध की भावना भड़क उठी। द्वितीय विश्व युद्ध से भारत में राजनीतिक जागरूकता और प्रबल हुई तथा स्वतंत्रता का लक्ष्य भारतीय राजनीति का केंद्र बन गया। सन 1936 से 1939 के बीच कांग्रेस ने द्वैध नीति अपनाई। यो कुरुष ने इटली, जर्मनी तथा जापान की युद्ध संबंधी नीतियों की निंदा की तथा फासीवाद के आक्रमण के शिकार अबिसिनिया, पैलेस्टाइन, स्पेन, चीन और चेकोस्लोवाकिया के प्रति अपना नैतिक समर्थन प्रदर्शित किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि भारत फासीवाद या नाजीवाद के विरुद्ध तभी युद्ध में शामिल होगा जब स्वयं स्वतंत्र हो जाए। मई 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारतीयों के समर्थन के बिना युद्ध में उन्हें शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों का विरोध करने का निश्चय किया। पृष्ठ संख्या 84। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस मंत्रालयों को सलाह दी कि वह सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में किसी भी प्रकार की सहायता न दें, यहाँ तक कि यदि कांग्रेस आवश्यक समझे तो सभी पदों से त्याग दें। 4 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। 3 सितंबर को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों की ओर से जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही भारत रक्षा अधिनियम भी लागू किया। इससे भारतीय क्रोधित हो गए। 5 सितंबर 1939 को गांधी वायसराय से मिले और ब्रिटेन के प्रति नैतिक समर्थन जाहिर किया। गांधी ने कहा, यद्यपि भारत और ब्रिटेन के बीच भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न पर मतभेद है, किंतु भारत को इस खतरे की स्थिति में ब्रिटेन की सहायता करनी चाहिए। इस वक्तव्य से भारतीयों को अत्यंत असंतोष हुआ, क्योंकि 1927 से ही कांग्रेस का कहना था कि अगला विश्व युद्ध भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति का अवसर प्रदान करेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादियों तथा साम्यवादियों ने गांधी का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटेन की हार में ही भारत की जीत है। इस दृष्टिकोण को जनता का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। इससे गांधी तथा उनके गुट के अन्य सदस्यों को यह महसूस हुआ कि ब्रिटेन के साथ भारतीयों के सहयोग के उनके दृष्टिकोण को भारतीयों का समर्थन नहीं मिलेगा और इससे उनका प्रभाव कम होगा, अतः वे अपने दृष्टिकोण को बदल लें। नेहरू का दृष्टिकोण भी गांधी के समान था। 4 सितंबर 1939 को वर्धा में हुई कांग्रेस की बैठक में फॉरवर्ड ब्लॉक ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो जाना चाहिए। यदि कांग्रेस यह अस्वीकार कर देती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक स्वेच्छा से देश के हित में कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इस दृष्टिकोण ने गांधी और उसके गुट को अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए मजबूर कर दिया। 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया तथा उसमें अंग्रेजी सरकार से भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने को कहा। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारत स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सरकार को युद्ध में अधिक सहायता दे सकेगा तथा आपसी सहयोग और रक्षा के हित में कार्य करेगा। वायसराय ने इसके उत्तर में 17 अक्टूबर 1939 को एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन को विश्व युद्ध में तत्काल कोई भौतिक लाभ नहीं होने वाला है। ब्रिटेन का उद्देश्य केवल एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से बचाया जा सके। पृष्ठ संख्या 85। इसमें यह भी कहा गया कि ब्रिटेन भारत को अपने स्वच्छ स्वराज प्रदान करने का इरादा रखता है। युद्ध के बाद भी भारत की संवैधानिक समस्या को हल करने के लिए भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाएगी। इससे कांग्रेस अत्यंत निराश हुई क्योंकि वायसराय का वक्तव्य मुस्लिम लीग तथा देसी नरेशों को मांग को पूरा करने की चेष्टा की गई तथा कांग्रेस की मांगों की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस को यह स्पष्ट हो गया कि सरकार एक बार फिर से फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना रही है और भारत को स्वतंत्र करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसके विरोध में कांग्रेस कार्य समिति ने 22 अक्टूबर 1939 को निंदा प्रस्ताव पास किया तथा सभी मंत्रालयों से त्याग पत्र देने का अनुरोध किया। फलस्वरूप कांग्रेस शासित 8 प्रांत के मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस मंत्रालयों द्वारा त्याग पत्र देने पर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। सरकार के विरोधी दृष्टिकोण के बाद भी गांधी तथा कांग्रेस असहयोग आंदोलन शुरू नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे समझते थे कि इससे सरकार के युद्ध प्रयासों में बाधा पड़ेगी। गांधी का कहना था, हम भारत की स्वतंत्रता ब्रिटेन के विनाश पर नहीं चाहते। नेहरू ने कहा कि इंग्लैंड की कठिनाई भारत के लिए सुअवसर नहीं है। ऐसे समय पर ब्रिटेन को असमंजस में डालना भारतीय प्रतिष्ठा के विरुद्ध है जब वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। इस समय भी कांग्रेस ब्रिटिश शासन के साथ समझौता करना चाहती थी। 27 जुलाई 1940 को पुणे में हुई एक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा गया कि भारत सहयोग के लिए तैयार है यदि ब्रिटेन भारत की स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ले। इसी बीच इंग्लैंड में चर्चिल प्रधानमंत्री बने जिन्होंने ये सब मांगे ठुकरा दीं जिससे कांग्रेस तथा सरकार के बीच खाई और भी बढ़ गई। वायसराय लीन लिथगो ने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव की घोषणा की जिसे अगस्त ऑफर अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें सरकार ने भारतीयों को अपनी कार्यकारिणी परिषद और सलाहकार परिषदों में लेने का आश्वासन दिया किंतु भारतीय इससे संतुष्ट नहीं हो सके क्योंकि यह स्वतंत्रता तो नहीं थी। पृष्ठ संख्या 86। व्यक्तिगत सत्याग्रह। कांग्रेस की सहयोगपूर्ण नीति के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने उसकी मांग को पूरा नहीं किया तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सीमित रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। 15 अगस्त 1940 को अपने मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस ने निश्चय किया कि यह आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। इस आंदोलन का उद्देश्य नैतिक विरोध की भावनाओं को व्यक्त करना था। केवल कुछ चुने हुए व्यक्तियों को ही आंदोलन करने की अनुमति थी क्योंकि गांधी इसे पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन बनाना चाहते थे। गांधी ने अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सर्वप्रथम विनोबा भावे को चुना, उसके बाद नेहरू को। धीरे धीरे सारे देश में महत्वपूर्ण नेताओं ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बहुत से नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार भी किया। इस पर भी गांधी ने अपना सत्याग्रह स्थगित नहीं किया। 1941 में रूस ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। रूस के शामिल होने से भारतीय स्वतंत्रता की मांग को गहरा धक्का लगा। सन 1941 तक रूस भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थक था, परंतु 12 जुलाई 1941 को रूस तथा इंग्लैंड में सैनिक संधि हो गई तथा रूस की सरकार ने रूस के प्रेस तथा लोगों पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति की आलोचना पर रोक लगा दी, क्योंकि युद्ध के दौरान ब्रिटिश रूस को युद्ध का सामान भेज रहा था। इस प्रकार 1942 के बाद रूस की रुचि भारत की स्वतंत्रता के प्रति कम हो गई, क्योंकि मित्र देश युद्ध को शीघ्र समाप्त करना चाहते थे, परंतु भारतीय तुरंत स्वतंत्रता चाहते थे, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जबकि भारत में ब्रिटेन के शासन के कारण उन पर भी जापान के आक्रमण की संभावना बढ़ गई थी। चियांग काईशेक ने इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति को लिखा, यदि ब्रिटेन भारतीयों की मांग स्वीकार नहीं करता तो भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का भी यही कहना था कि यदि भारतीयों को युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्रदान करने का निश्चय किया जाए तो भारतीय अवश्य ही ब्रिटेन की सहायता करेंगे। अंत में कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के लिए वारदोली के अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त करने का निश्चय किया, किंतु ब्रिटेन अभी भी भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में नहीं था। सत्याग्रह को अपनाते हुए गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के नए चरण की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 1942 का आंदोलन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। पृष्ठ संख्या 87। संदर्भ पहला, अयोध्या सिंह, भारत का मुक्ति संग्राम, दिल्ली, द मैकमिलन कंपनी ऑफ इंडिया, 1977, 551। दूसरा, बी एल ग्रोवर, उपरोक्त संख्या 263। तीसरा, रामविलास शर्मा, उपयुक्त संख्या 14,427। चौथा, वी पट्टा भी सीतारामैया, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नई दिल्ली, ईस्ट चांद कंपनी, 1969, 335। पाँचवा, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त संख्या 8, 232। छठा, वी पट्टा भी सीतारामैया, उपयुक्त संख्या 20, 366। सातवां, सत्या राय, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, 1985, 337। आठवां, आर सी मजूमदार, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, कलकत्ता, 1963। नवा, राम नरेश त्रिवेदी, उपयुक्त संख्या 5, 140। दसवां, सुमित सरकार, द लॉजिक ऑफ गांधियन नेशनलिज्म, सिविल डिसोबियंस एंड गांधी इरविन पैक्ट, 1930-31, इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू, जुलाई, 1976। ग्यारहवां, सत्या राय, उपरोक्त संख्या 23, 352। बारहवां, रजनी पाम दत्त, उपरोक्त संख्या 9, 338। तेरहवां, अरुण चंद्र भुयन, दि किट इंडिया मूवमेंट, द सेकेंड वर्ल्ड वार एंड इंडियन नेशनलिज्म, नई दिल्ली, मानस पब्लिकेशन, 1957, 4। चौदहवां, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में की थी, उनके विचार गांधी के विचारों से नहीं मिलते थे। पंद्रहवां, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, 1920-42, मुंबई, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1967, 3342। सोलहवां, उपरोक्त संख्या, पृष्ठ 26।